लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे संकट में फंसे परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं, ताकि टूटे हुए परिवार क्षमा के माध्यम से अपने घावों का उपचार खोज सकें और अपने बीच व्याप्त मतभेदों के बावजूद एक दूसरे के उपहारों को फिर से खोजने में सक्षम बन सकें। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की। श्रोताओं, हम अपने कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन के अंतर्गत पवित्र हृदय पर संत पापा फ्रांसिस के विश्व प्रेरितिक पत्र दिल एक्सित नोस अर्थात उसने हमें प्रेम किया है की चर्चा सुन रहे हैं। दिल एक्सित नोस के तीसरे अध्याय का शीर्षक है यह हृदय है जिसने हमें गहराई से प्रेम किया है। इस अध्याय के अंतिम भाग में संत पापा फ्रांसिस कहते हैं कि मैं इस बात को भी जोड़ना चाहता हूं कि ख्रिस्त का हृदय हमें समुदायों में किसी भी तरह के द्विवाद और पुरोहितों का अत्यधिक रूप में बाहरी गतिविधियों में उलझे रहना, संरचनात्मक सुधार जिनका सुसमाचार से कोई लेना देना नहीं होता, संगठन की जुनूनी परियोजनाएं, सांसारिक योजनाएं, दुनियावी सोच विचार और अनिवार्य कार्यक्रमों से स्वतंत्र करता है। इसका परिणाम अक्सर ख्रिस्तीय धर्म में आस्था की कोमल सांत्वना, दूसरों की सेवा करने की खुशी, प्रेरिताई के प्रति व्यक्तिगत प्रतिबद्धता में उत्साह, मसीह को जानने की सुंदरता और उनके द्वारा दी जाने वाली मित्रता से उत्पन्न गहन कृतज्ञता और हमारे जीवन को दिए जाने वाले अंतिम अर्थ से वंचित होना होता है। श्रोताओं, जब हम एक बार इन मनोभावनाओं का शिकार होते हैं जो हमारे जीवन में बहुत अधिक फैली हुई हैं, तो हम उनसे मुक्त होने की इच्छा को भी खो देते हैं। संत पापा फ्रांसिस कहते हैं कि यह मुझे सारी कलीसिया के सामने इस सुझाव को प्रस्तुत करने हेतु प्रेरित करता है कि हम यीशु ख्रिस्त के प्रेम पर चिंतन करें जो हमारे लिए उनके पवित्र हृदय में प्रस्तुत किया जाता है, क्योंकि वहां हम पूरे सुसमाचार को पाते हैं, हमारे विश्वास के सारांश को, उन सारी चीजों को जिन्हें हम खोजते और जिनकी हम आराधना करते हैं जो हमारे जीवन की सबसे जरूरी बातों का उत्तर देती हैं। श्रोताओं, जब हम यीशु ख्रिस्त के हृदय पर चिंतन करते हैं जो हमारे लिए सुसमाचार के सारांश का देह धारण है, हम अपने में यीशु ख्रिस्त की छोटी संत तेरेसा के उदाहरण का अनुसरण कर सकते हैं। अपने हृदय में हुई विश्वास की अनुभूति को अपने में नहीं बल्कि ईश्वर के अनंत दिव्य प्रेम में रखने की जरूरत है जो हमें शर्तहीन प्रेम करती और इसे हमारे लिए यीशु ख्रिस्त के क्रूस में पहले से प्रकट करते हैं। तेरेसा अपने में ऐसा कर सकी क्योंकि उन्होंने ख्रिस्त के हृदय में ईश्वर को पाया जो प्रेम है। उन्होंने मुझे अपना अनंत प्रेम प्रदान किया है और इसके द्वारा मैं दिव्य पूर्णताओं को अपने लिए चिंतन और आराधना करती हूँ। यही कारण है एक प्रसिद्ध प्रार्थना जिसे हम तीर विनती के रूप में यीशु की ओर इंगित पाते हैं जो कहता है, यीशु मैं तुझ पर विश्वास करता हूँ। इससे अधिक और कोई भी शब्द जरूरी नहीं है। संत पापा फ्रांसिस कहते हैं कि हम अपने अगले अध्यायों में दो मुख्य बातों पर जोर देंगे, पवित्र हृदय के प्रति समकालीन भक्ति को व्यक्तिगत आध्यात्मिक अनुभव और सामुदायिक मिशनरी प्रतिबद्धता से संयोजित करने की आवश्यकता है ताकि यह हमें पोषित कर सके और हमें सुसमाचार के करीब ला सके। श्रोताओं, संत पापा फ्रांसिस के विश्व प्रेरितिक पत्र दिल एक्सित नोस के पांचवें अध्याय का शीर्षक है, एक प्रेम जो हमें अपने को पेय स्वरूप देता है। इसकी शुरुआत करते हुए संत पापा फ्रांसिस कहते हैं कि हम पुनः धर्म ग्रंथ प्रेरणा से लिखी गई पुस्तक की ओर लौटें, जहां हमारा मिलन प्रकाशना में ईश्वर से होता है। वहां कलीसिया की एक सजीव परंपरा में हम इस बारे में सुनते हैं कि इतिहास में ईश्वर ने हमें क्या बतलाने की चाह रखी। नए विधान और पुराने विधानों के विभिन्न पदों में हम ईश्वर के वचनों में प्रकाशना को पाते हैं, जिसके फलस्वरूप इतिहास में लोगों को महान आध्यात्मिक तीर्थ यात्रा हेतु दिशा निर्देश प्राप्त हुआ। श्रोताओं, धर्म ग्रंथ बाइबल हमें यह बतलाती है कि लोग चुनी हुई प्रजा जो मरुभूमि की यात्रा करते हुए और स्वतंत्रता की चाह रखते हैं, उन्हें जीवन जल बहुतायत में एक प्रतिज्ञा स्वरूप प्राप्त होती है, तुम आनंदित होकर मुक्ति के स्रोत में जल भरोगे। मसीह की मुक्तिदायी भविष्यवाणियां धीरे धीरे शुद्ध करने वाले जल की कल्पना स्वरूप एकत्र हो गईं। मैं तुम लोगों पर पवित्र जल छिड़कूंगा और तुम पवित्र हो जाओगे। मैं तुम लोगों को तुम्हारी सारी अपवित्रता से और तुम्हारी सब देव मूर्तियों के दूषण से शुद्ध कर दूंगा। मैं तुम्हें एक नया आत्मा प्रदान करूंगा। यह जल ईश प्रजा को जीवन की पूर्णता प्रदान करेगी, एक उस झरने की भांति जो मंदिर से प्रवाहित होते हुए अपने साथ जीवन और मुक्ति की कृपा लेकर आती है। मुझे जल धारा के दोनों तटों पर बहुत से पेड़ दिखाई पड़े। यह नदी जहां कहीं गुजरती है वहां पृथ्वी पर विचरने वाले प्राणियों को जीवन प्रदान करती है। वहां पृथ्वी पर विचरने वाले प्राणियों को जीवन प्राप्त होता है। वहां बहुत सी मछलियां पाई जाएंगी, क्योंकि यह धारा समुद्र का पानी मीठा कर देती है और जहां कहीं भी पहुंचती है जीवन प्रदान करती है। श्रोताओं, यहूदी पर्व सुकोत जो हमें 40 वर्षों तक मरुभूमि में उनकी यात्रा की याद दिलाती है, धीरे धीरे जल के प्रतीक को एक केंद्रीय तत्व के रूप में अपना लेती है। इसमें प्रत्येक सुबह जल चढ़ाने की रस्म शामिल थी, जो पर्व के अंतिम दिन सबसे अधिक पवित्र हो जाती थी, जब मंदिर की ओर एक विशाल जुलूस निकाला जाता था। वेदी की परिक्रमा 7 बार की जाती थी और खुशी के जोरदार जय घोष के बीच ईश्वर को जल चढ़ाया जाता था। श्रोताओं, मेसेनिक काल मसीह के वर्ष की शुरुआत को एक झरने के रूप में घोषित किया जाता है, जो लोगों के ऊपर फूट कर आएगा। नबी जकराया के ग्रंथ अध्याय 12 के पद 10 से अध्याय 13 के पद 1 में हम पढ़ते हैं, मैं दाऊद के वंश और यरूशलेम के निवासियों को दया तथा प्रार्थना का भाव प्रदान करूंगा। उन्होंने जिसे छेदा है वे उसी की ओर देखेंगे। जिस तरह कोई अपने एक लौटे पुत्र के लिए विलाप करता है, उसी तरह वे उसके लिए रोएंगे। मगिदोन के मैदान में हदद रिमोन के विलाप के समान उस दिन यूदा में महान शोक मनाया जाएगा। कुटुम्ब के कुटुम्ब सारा देश विलाप करेगा। दाऊद का राज परिवार अलग और उसकी स्त्रियां भी अलग। नातान का कुटुम्ब अलग और उसकी स्त्रियां भी अलग। लेवी का कुटुम्ब अलग और उसकी स्त्रियां भी अलग। शिमाई का कुटुम्ब अलग और उसकी स्त्रियां भी अलग। अन्य सब कुटुम्ब भी विलाप करेंगी और उनकी स्त्रियां भी अलग अलग विलाप करेंगी। उस दिन दाऊद के घराने और यरूशलेम के नागरिकों के पाप और अशुद्धता धोने के लिए एक नया स्रोत फूट निकलेगा। श्रोताओं, हमने अपने मंगलवारीय कार्यक्रम कलीसियाई दस्तावेज एक अध्ययन के अंतर्गत संत पापा फ्रांसिस के विश्व प्रेरितिक पत्र दिल एक्सित नोस अर्थात उसने हमें प्रेम किया पर एक चर्चा सुनी। हम आगे भी इस पर अपनी चर्चा जारी रखेंगे।
कलवरी के क्रूस पर प्रेरित को वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। पोप फ्रांसिस के स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है और उनकी स्थिति स्थिर बनी हुई है। सोमवार शाम को वैटिकन प्रेस कार्यालय ने पोप फ्रांसिस के बारे में चिकित्सा अपडेट जारी करते हुए बतलाया कि पोप की हालत स्थिर है और श्वसन एवं मोटर थेरेपी की बदौलत उनमें थोड़ा सुधार हुआ है। वे नाक की नलिकाओं के साथ हाई फ्लो ऑक्सीजन थेरेपी का प्रयोग कम बार कर रहे हैं और कभी कभी ऑक्सीजन थेरेपी के बिना भी काम चला लेते हैं। रात में वे नॉन इन्वेसिव यांत्रिक वेंटिलेशन का उपयोग करते हैं। रविवार को ली गई और प्रकाशित की गई तस्वीर में उनके हाथ में सूजन देखी गई थी, जो गतिशीलता में कमी के कारण हुई है, लेकिन सोमवार शाम को इसमें पहले से सुधार देखा गया। संत पापा ने अपने दिन को प्रार्थना, आराम और कुछ कामों में व्यतीत किए। अगला मेडिकल बुलेटिन बुधवार को जारी किया जाएगा। पोप फ्रांसिस ने इतालवी दैनिक समाचार पत्र कोरियेरे देला सेरा के प्रधान संपादक लुसियानो फोंताना को एक पत्र लिखा है, जिससे उन्होंने अपनी बीमारी के दौरान फोंताना द्वारा दिए गए समर्थन संदेश के जवाब में लिखा है। पत्र में पोप ने फोंताना से शांति और निरस्त्रीकरण के लिए अपनी अपील को फिर से शुरू करने और उसे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया है। पत्र में पोप लिखते हैं, मैं आपको सामीप्य के उन शब्दों के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं, जिनके द्वारा आपने बीमारी के इस क्षण में अपनी उपस्थिति व्यक्त की है, जहां से, जैसा कि मैंने पहले ही कहा है, युद्ध और भी मूर्खतापूर्ण लगता है। मानवीय दुर्बलता हमें इस बात को अधिक स्पष्ट रूप से समझने में मदद करती है कि क्या टिकाऊ है और क्या नश्वर, क्या जीवन देता है और क्या मारता है। शायद इसी कारण से हम अक्सर सीमाओं और दुर्बलताओं को नकार देते हैं एवं घायल लोगों से बचते हैं, क्योंकि उनके पास उस दिशा पर सवाल उठाने की शक्ति है जिससे हमने व्यक्तिगत एवं समुदाय दोनों के रूपों में चुना है। संत पापा आगे लिखते हैं, मैं आपको और उन सभी लोगों को प्रोत्साहित करना चाहूंगा जो संचार साधनों के माध्यम से सूचना देने के लिए अपना काम और बुद्धिमत्ता समर्पित करते हैं, जो शब्दों के पूर्ण महत्व को महसूस करने के लिए हमारी दुनिया को वास्तविक समय में जोड़ते हैं। वे कभी भी केवल शब्द नहीं होते, वे तथ्य होते हैं जो मानवीय परिस्थिति को आकार देते हैं। वे जोड़ सकते हैं या विभाजित कर सकते हैं, सत्य की सेवा कर सकते हैं या अन्य उद्देश्यों के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं। हमें शब्दों को निरस्त्र करना, दिमाग को अस्त्रहीन करना और पृथ्वी को हथियारों से मुक्त करना चाहिए। हमें चिंतन, शांति और जटिलता के प्रति जागरूकता की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि युद्ध केवल समुदायों और पर्यावरण को तबाह करता है, संघर्षों का समाधान नहीं करता, जबकि कूटनीति और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को नई जीवन शक्ति एवं विश्वसनीयता की आवश्यकता है। इसके अलावा धर्म, लोगों की आध्यात्मिकता से भाईचारे और न्याय की इच्छा एवं शांति की आशा को फिर जगाए। इन सब के लिए प्रतिबद्धता, काम, मौन और शब्दों की आवश्यकता है। आइए हम इस प्रयास में एकजुट महसूस करें, ताकि स्वर्गीय अनुकंपा हमें प्रेरित करे और हमारा साथ देता रहे। जब पुनः शस्त्रीकरण होता है तो कभी न कभी हथियारों का इस्तेमाल हो ही जाएगा, है ना? यही कहते हुए वैटिकन राज्य सचिव कार्डिनल पेत्रो परोली ने हाल ही में कई यूरोपीय देशों द्वारा पुनः शस्त्रीकरण के लिए किए जा रहे प्रयासों का एक आकलन पेश किया है, जब अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में गहरा बदलाव आ रहा है। कार्डिनल परोलिन ने सोमवार शाम को वैटिकन के लिए मोरक्को के दूतावास द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम रमजान टेबल इफ्तार के अवसर पर पत्रकारों से बात की। यूरोप को पुनः शस्त्रीकृत करने की योजना के बारे पूछे जाने पर कार्डिनल ने बतलाया कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद से ही परमधम पीठ ने सामान्य एवं नियंत्रित शस्त्रीकरण का आह्वान किया है। इसलिए उन्होंने कहा कि चीजें जिस दिशा में आगे बढ़ रही हैं, उससे हम खुश नहीं हो सकते। कार्डिनल परोलिन ने रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध विराम वार्ता के बारे में पूछे गए एक सवाल का भी जवाब दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि रूस ने कुछ शर्तें रखी हैं, खासकर युद्ध विराम के अनुपालन के सत्यापन के संबंध में। उन्होंने कहा, हमें उम्मीद है कि ऐसी कोई पूर्व शर्त नहीं लगाई जाएगी जो वार्ता की शुरुआत में बाधा बने। कार्डिनल परोले ने वार्ता के लिए परमधम पीठ का समर्थन व्यक्त किया और आशा जताई कि इससे आगे की वार्ता होगी जो युद्ध को समाप्त कर सकती है और न्यायपूर्ण तथा स्थायी शांति स्थापित कर सकती है, जिसके हम लंबे समय से आशा कर रहे हैं। उन्होंने कहा, चूंकि यूक्रेन ने आखिरकार अपनी इच्छा व्यक्त कर दी है, इसलिए हमें उम्मीद है कि इस युद्ध विराम को शुरू करने के लिए दूसरे पक्ष की ओर से भी इच्छा होगी। संत पापा फ्रांसिस के स्वास्थ्य के संबंध में वैटिकन राज्य सचिव ने सभी को आमंत्रित किया कि मेडिकल बुलेटिन पर भरोसा किया जाए। उन्होंने कहा, क्योंकि वे संत पापा की स्थिति के बारे में सटीक जानकारी देते हैं। कार्डिनल परोली ने बतलाया कि पिछले सप्ताह उन्होंने पोप से मुलाकात की थी और कहा कि पहली बार की तुलना में पोप बेहतर स्थिति में हैं। उन्होंने कहा कि इन मुलाकातों के दौरान पोप उन मुद्दों और समस्याओं पर मार्गदर्शन देते हैं जिनका समाधान आवश्यक है। एक पत्रकार के इस सवाल के जवाब में कि क्या कार्डिनल परोलिन एवं पोप फ्रांसिस ने उनके इस्तीफे की संभावना पर चर्चा की है, कार्डिनल ने कहा, बिल्कुल नहीं। फिदेस न्यूज एजेंसी द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार 2015 और 2025 के बीच नाइजीरिया में कुल 145 पुरोहितों का अपहरण किया गया और 11 की हत्या कर दी गई, जो फिरौती से संबंधित अपहरणों में निरंतर वृद्धि को दर्शाता है। नवीनतम घटना 5 मार्च को हुई, जब कादुना के कफान चंधम प्रांत के पुरोहित फादर सिल्वेस्टर ओकेक्वा की हत्या उनके अपहरण के एक दिन बाद कर दी गई थी। यूनिसेफ ने गजा में जीवन रक्षक मानवीय सहायता पहुंचाने पर प्रतिबंध की निंदा की है। यूनिसेफ के एडवर्ड बेगबेडर कहते हैं कि गजा पट्टी में सहायता नहीं पहुंचने के कारण एक बार फिर लगभग 10 लाख बच्चे बिना बुनियादी सुविधाओं के रह रहे हैं, जिनकी उन्हें जीवित रहने के लिए जरूरत है। और इसी के साथ हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।